नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के एक बहुत महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करने जा रहे हैं। उद्बोधन का नाम है आराधना क्यों और कैसे।
इसमें सेवा के आध्यात्मिक महत्व पर जोर दिया गया है।
जी बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव इसमें त्रिवेणी संगम का एक बहुत सुंदर रूपक देते हैं, उपासना, साधना और आराधना का संगम।
हाँ, जैसे प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती।
जी, तो उपासना हो गई ईश्वर के साथ जुड़ना।
बिल्कुल।
साधना यानी अपने आप पर काम करना, खुद को तराशना। और आज हम तीसरी धारा जो कि आराधना है उस पर थोड़ा गहराई से विचार करेंगे।
और पूज्य गुरुदेव के अनुसार आराधना मतलब?
आराधना मतलब समाज की सेवा। बहुत सीधी सी बात, उपासना भगवान की, साधना अपनी और आराधना समाज की।
ठीक है, पर ये समाज सेवा मतलब आराधना ये इतनी जरूरी क्यों बताई गई है? आमतौर पर लोग जैसे भक्ति, ध्यान, पूजा पाठ को ही ज्यादा अहमियत देते हैं। हाँ, ये सवन बहुत स्वाभाविक है। देखिए, पूज्य गुरुदेव का नजरिया थोड़ा अलग है और बहुत व्यवहारिक भी है। वो समझाते हैं कि आराधना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, ये हमारे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए और एक तरह से एक बहुत बड़े ऋण से मुक्ति पाने के लिए अनिवार्य है।
ऋण? कैसा ऋण?
देखिए, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, है ना?
बिल्कुल।
जन्म से लेकर आप सोचिए, जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, हम कितने लोगों पर निर्भर होते हैं। माता पिता, हमारे शिक्षक, अन्न उगाने वाले किसान, कपड़ा बनाने वाले, मकान बनाने वाले, अनगिनत लोग।
हाँ, ये बात तो है। मनुष्य का बच्चा तो बिना सहारे के जी भी नहीं सकता शुरुआत में।
सही कहा। तो इन सब का हम पर एक तरह का ऋण चढ़ जाता है और इसी ऋण को उतारना, इसी कर्ज को चुकाना ही असल में आराधना है, समाज सेवा।
अच्छा, तो सेवा ना करना मतलब कर्जदार बने रहना?
पूज्य गुरुदेव तो यही कहते हैं ना। उनका मानना है कि जो सेवा नहीं करता वो एक तरह से समाज का कर्जदार होकर ही जाता है। और ऐसी मान्यता है कि फिर ये ऋण चुकाने के लिए आत्मा को क्या कहते हैं, 84 लाख योनियों के चक्कर में भी पड़ना पड़ सकता है।
बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है।
जी, और सेवा सिर्फ ऋण चुकाने के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी उन्नति के लिए भी जरूरी है। जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं तभी तो नई ताजी हवा अंदर ले पाते हैं, है ना?
हाँ।
या पेट खाली होता है तभी उसमें और भोजन जा सकता है। वैसे ही जब हम कुछ देते हैं तभी हमें कुछ पाने का अधिकार मिलता है। देना पहले आता है।
पूज्य गुरुदेव ने भेड़ का उदाहरण भी दिया शायद।
हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है। भेड़ अपनी ऊन देती है तो प्रकृति उसे और ऊन देती है। देना बंद तो मिलना भी बंद।
और पेड़?
पेड़ फल देते हैं तो उन पर और फल लगते हैं। बीज जब तक मिट्टी में गल नहीं जाता वो अंकुरित कैसे होगा? त्याग, देना, ये उन्नति का नियम है।
तो जो लोग कंजूस होते हैं, स्वार्थी होते हैं, वो असल में अपनी ही उन्नति रोक रहे होते हैं।
बिल्कुल, वो प्रकृति के इस नियम को समझ ही नहीं पाते। उन्नति के लिए त्याग और सेवा ये तो अनिवार्य शर्तें हैं। आप पुराने ऋषि मुनियों को देखिए, वो क्या सिर्फ गुफा में बैठकर भजन करते थे?
नहीं, ऐसा तो नहीं सुना। वो तो बड़े बड़े काम करते थे।
हाँ, गुरुकुल चलाते थे, समाज को ज्ञान देते थे, तीर्थों का प्रबंधन करते थे, आयुर्वेद जैसी विद्याएं विकसित की। नारद जी को देखिए, चरक, सुश्रुत, व्यास, ये सब सेवाभावी थे। पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि भजन शब्द का मूल ही भज सेवा यम धातु में है, मतलब सेवा।
अच्छा, भजन मतलब भी सेवा?
हाँ, जिसके हृदय में करुणा नहीं, सेवा का भाव नहीं, वो सच्चा भक्त कैसे हो सकता है? द्रौपदी की कहानी याद है?
हाँ, उन्होंने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर संत को दिया था।
जी, और उसी छोटे से दान ने, उस सेवा भाव ने उनकी लाज बचाई। या वो सुनहरे नेवले की कहानी?
हाँ, जिसका आधा शरीर सोने का हो गया था।
क्यों हुआ? क्योंकि एक गरीब ब्राह्मण परिवार ने खुद भूखे रहकर अपनी 4 रोटियां एक जरूरतमंद चांडाल को दे दी थी, उनके उस त्याग, उस करुणा से। ये कथाएं यही सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति उदारता और सेवा में ही प्रकट होती है।
ये तो स्पष्ट हो गया कि सेवा बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हर तरह की सेवा का फल एक जैसा होता है या इसमें भी कुछ प्रकार हैं? पूज्य गुरुदेव कुछ बताते हैं इस बारे में?
हाँ, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की सेवा बताते हैं। पहला है विपद वारणाएं।
विपद वारणाएं, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है किसी की तात्कालिक मुसीबत को दूर करना। जैसे कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दिया, कोई बीमार है उसकी दवा दारू कर दी, कहीं बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया तो वहां जाकर मदद कर दी, ये पुण्य का काम है निश्चित रूप से।
हाँ, ये तो हम सब करते ही हैं या करने की कोशिश करते हैं।
जी, लेकिन ये ज्यादातर शारीरिक या बाहरी कष्ट को ही दूर करता है। ये जरूरी है, पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इससे भी श्रेष्ठ एक और सेवा है।
अच्छा, वो कौन सी?
वो है यज्ञार्थाय।
यज्ञार्थाया, ये क्या है?
यज्ञार्थाय सेवा का मतलब है लोगों के सोचने के ढंग को बदलना, उनकी आत्मा को ऊंचा उठाना, उन्हें ज्ञान देना, प्रकाश देना, अच्छे संस्कार देना, कुरीतियों और अंधविश्वासों से लड़ने की हिम्मत देना। ये है यज्ञार्थाय सेवा।
ओह, यानी ये लोगों को अंदर से बदलने वाली सेवा है।
बिल्कुल, इसका पुण्य हजार गुना ज्यादा माना गया है। क्यों? क्योंकि ये समस्या की जड़ पर काम करती है, यानी अज्ञान और बुरे संस्कारों पर। विपद वारणाय सेवा तत्कालिक राहत देती है, पर यज्ञार्थाय सेवा स्थायी समाधान की ओर ले जाती है।
इसका कोई उदाहरण?
पूज्य गुरुदेव हजारी किसान का उदाहरण देते हैं। एक किसान ने हजार आम के पेड़ लगाए।
हाँ?
तो उसने सिर्फ लोगों को फल नहीं दिए, उसने पूरे इलाके का मौसम बदल दिया, हवा शुद्ध की, पानी का स्तर सुधारा, लोगों को रोजगार दिया, स्वास्थ्य सुधारा। ये एक यज्ञ था, दीर्घकालिक प्रभाव वाला काम।
समझ गया। तो ज्ञान देना, अच्छे विचार फैलाना, लोगों को जागरूक करना, चरित्र निर्माण में मदद करना, ये सब यज्ञार्थाय सेवा हुई।
जी हाँ, पूज्य गुरुदेव इसे ब्रह्मदान कहते हैं, ज्ञान का दान, और इसे वो राजा कर्ण के सोने के दान से भी श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि सोना तो आज है, कल नहीं, पर ज्ञान और संस्कार व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं, पीढ़ियों को सुधार देते हैं।
ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब सेवा सिर्फ दान पुण्य तक सीमित नहीं है।
बिल्कुल नहीं। संक्षेप में कहें तो पूज्य गुरुदेव के अनुसार आराधना यानी सेवा आध्यात्मिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये सिर्फ परोपकार नहीं है, ये आत्मविकास का, अपने ऋणों से मुक्त होने का और सच्चा स्थायी आनंद पाने का रास्ता है।
और इसी सेवा के माध्यम से मनुष्य, वो जो कहते हैं नरसे नारायण बनने की यात्रा करता है, देवता बनता है, यानी देने वाला।
सही कहा। और इसमें भी यज्ञार्थाय सेवा यानी ज्ञान और संस्कारों द्वारा लोगों की आत्मा को जगाने वाली सेवा का महत्व सबसे ज्यादा है।
ये एक बहुत ही उपयोगी और आंखें खोलने वाली चर्चा रही।
जी, और अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं, जैसा पूज्य गुरुदेव अक्सर करते थे। हमें सोचना चाहिए कि हम अपना समय, अपनी शक्ति, अपने साधन जो भी हमारे पास है, उनका कितना हिस्सा केवल तात्कालिक राहत देने, विपद वारणाय में लगा रहे, और कितना हिस्सा लोगों के स्थायी आत्मिक उत्थान यज्ञार्थाय यानी ज्ञान फैलाना, अच्छे विचार जगाने, चरित्र निर्माण करने जैसे कामों में लगा रहे।
हाँ, इस संतुलन पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद हम तात्कालिक मदद में ही ज्यादा उलझे रहते हैं और दीर्घकालिक समाधानों पर कम ध्यान दे पाते हैं।
बिल्कुल, इसी चिंतन के साथ शायद हम अपनी सेवा को और सार्थक बना सकते हैं।